आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूर के पद। इसके कवि हैं सूरदास। सूरदास के पद नामक कविता में भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा के कृष्ण भक्त सूरदास द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण एक भोले बच्चे की तरह अपनी माता से पूछते हैं कि उनकी ये चोटी कब बढ़ेगी। तेरे कहने पर मैं खूब दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, फिर भी ये बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी नहीं होती। हजार प्रयत्न करने के बाद भी ये वैसी की वैसी ही रहती है। और दूसरे पद में एक गोपी आकर माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण उनका मक्खन चोरी से खा लेते हैं। जब दिन के समय घर पर कोई नहीं होता, वे चुपचाप आ जाते हैं और घर में रखा हुआ सारा मक्खन चुरा लेते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर खा जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सूरदास के पद। पहला पद, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहत बल्की बेनी ज्यो है लांबी मोटी, काढ़त गुअत नहावत जे है नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। इन पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बार बार अपनी चोटी के ना बढ़ने की शिकायत करते हुए पूछ रहा है कि ये आखिर कब बढ़ेगी, जबकि उनके बड़े भाई बलराम की चोटी तो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। कवि सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण को अपनी चोटी के ना बढ़ने की चिंता सताई जा रही है और वो एक दिन अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माता, मेरी ये चोटी आखिर कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पिया तब भी ये छोटी की छोटी है, कितनी बार मैं दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, कितनी बार मैंने दूध पिया, कब से आप मुझे दूध पिलाए जा रही हो, लेकिन ये तो अब भी छोटी है, तुम तो कहती थी कि यदि मैंने बलराम की तरह दूध पिया तो मेरी चोटी भी भैया बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, तू जो कहते बल्की बेनी ज्यो है लांबी मोटी, कहते अगर आपने तो कहा था कि अगर मैं बलराम भैया की तरह दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी भी बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। और आगे, काढ़त गुहत नहावत जे है नागिन सी भई लोटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बार बार बालों को बनाने गूंधने नहाने धोने से ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब ये खुलेगी तो जमीन पर नागिन की तरह दिखाई देगी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। कहते हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, खाने के लिए मक्खन रोटी तो देती ही नहीं, जबकि मुझे तो माखन रोटी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं कच्चा दूध पी लेता हूँ क्योंकि मुझे चोटी बढ़ानी है, लेकिन मैं बार बार कितने दिनों से ये कच्चा दूध पी रहा हूँ, ये चोटी तो लंबी होती नहीं है। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की चोटी। कृष्ण कहते हैं कि मैं बार बार दूध इसलिए पीता रहा कि मेरी चोटी की लंबाई और मोटाई बढ़ेगी, लेकिन ये तो वैसी की वैसी ही है। तो श्री कृष्ण इन पंक्तियों में अपनी माता से यही शिकायत कर रहे हैं कि उनकी चोटी बड़ी क्यों नहीं होती है, जबकि उन्होंने सारे काम किए हैं जो उनकी माँ ने उनसे करने के लिए बोले थे। वो अपनी चोटी को अपने बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि मैंने सारे काम कर लिए, रोज आप मुझे दूध पिलाती हो, कितनी बार से मैं दूध पी रहा हूँ तब भी तो ये छोटी है, आप ही कहती हो कि अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बिल्कुल लंबी और मोटी हो जाएगी भैया की तरह, लेकिन ये तो होती ही नहीं है, और रोज मैं इसे काटता हूँ, गूंथता हूँ, सब काम करता हूँ, नहाता धोता हूँ, बालों का इतना ख्याल रखता हूँ, और आप कहते हैं कि ऐसे करने से ये बाल इतने बड़े हो जाएंगे कि जब चोटी खुलेगी तो मेरे बाल जमीन पे दिखाई देंगे, जमीन तक लंबे नागिन की तरह लहराते हुए, लेकिन फिर भी ये बड़ी नहीं हुई, रोज कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी भी खाने को नहीं देती, और मैं ये सब भी करता हूँ लेकिन इसके बाद भी ये मोटी बढ़ती नहीं है, वैसी की वैसी ही है, मैं बार बार कच्चा दूध भी पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ, लेकिन मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की चोटी। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल सुलभ बातें सुनकर यशोदा माता कहती हैं कि ईश्वर करे तुम दोनों भाई लंबे समय तक जीवित रहो और तुम दोनों की जो जोड़ी है कृष्ण श्री कृष्ण और बलराम की, ये भाई भाई की जो जोड़ी है ये हमेशा सलामत रहे, हमेशा बनी रहे, तुम दोनों ऐसे ही चिरंजीवी रहो, तुम्हें लंबी आयु लंबी उम्र प्रदान हो और हमेशा तुम खुशहाल रहो, साथ में रहो, तुम्हारी जोड़ी जो है वो हमेशा बनी रहे, तुम दोनों कभी अलग ना हो। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की बाल सुलभ भोली भोली बातों का वर्णन किया गया है। इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार है, पची पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा नागिन सी भोईलोटी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, खोल किवार पैठ मंदिर पे, दूध दही सब सखन खवायो, ऊखल चढ़े सीके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तही पूत अनोखो जायो। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने ग्वालिनों के घर जाकर दूध मक्खन आदि चुरा कर खाना शुरू कर दिया। जब एक गोपी को श्री कृष्ण की चोरी का पता चल गया तो वो यशोदा माँ के पास गई और श्री कृष्ण की चोरी की शिकायत करने लगी। गोपी श्री कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से करते हुए कहती है कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण बार बार मेरे घर से मक्खन चुरा कर खाता है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे बेटे ने मेरे घर से मक्खन चुरा कर खाया है। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, दोपहर के समय वह हमारे घर को सूना जानकर अंदर का रास्ता ढूंढते हुए भीतर आ गया। दोपहर में जब घर पर कोई नहीं था तो इसने देखा कि घर में कोई नहीं है, घर सूना पड़ा हुआ है, तो बस अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया और अंदर आ गया। खोल किवार पैठ मंदिर पे, दूध दही सब सखनी खवायो, मेरे घर का दरवाजा खोल कर दूध दही खुद भी खाया और अपने सारे साथियों को भी खिलाया। ऊखल चढ़ सीकों को लीन हो, अनभावत भई में ढरकायो। इस पर यशोदा माँ गोपी से पूछती है कि मेरा कृष्ण तो छोटा है, उसका हाथ छींके तक किस प्रकार पहुंच गया, उसका हाथ छींके तक कैसे पहुंच जाएगा। गांव में लोग जो मटकी होती है दूध दही की उसको छींके पे रखती हैं, वो छत पे से लटकाया जाता है, मटकी जो है वो छत पे ऊपर लटकाई जाती है, मतलब छत पे नहीं अंदर कमरे के अंदर छत से लटका दी जाती है छींके पर, उस पर रखी जाती है मटकी दूध दही की। तो वही यशोदा माँ पूछती है कि कृष्ण तो अभी छोटा है, वो छींके तक कैसे पहुंच गया। तो गोपी इसका उत्तर देते हुए कहती है कि श्री कृष्ण ने ऊखल पर चढ़कर छींके को पा लिया, वो ऊखली पर चढ़ गए थे और इस तरह से वो छींके तक पहुंच गया, उसे जो कुछ अच्छा लगा उसे खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे धरती पर गिरा दिया, तो जितना अच्छा लगा जितना मन किया खा लिया, जो बच गया उसे फैला दिया, बिखेर दिया, धरती पर बर्बाद कर दिया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। दिन प्रतिहानि होत गोरस की, यह ढोका कौने ढंग लायो। और वो गोपी कहती है कि ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही ये हुआ है, बल्कि ये तो रोज रोज की बात हो गई है, ये रोज की बात है। आपका कृष्ण रोज गोपियों के घर में जाता है और हमारे घर से दूध और दही को खा जाता है, इससे गोरस की बहुत हानि हो रही है, बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूर श्याम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। और गोपी कहती है कि हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम्हारा पुत्र मक्खन चुराने के ऐसे तरीके ढूंढ कहाँ से लेता है। और आगे सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने अपने पुत्र को किसी काम को करने के लिए मना ही नहीं कर रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम्हारा ही अकेला पुत्र नहीं है, हम सभी के पुत्र होते हैं, सभी को मक्खन पसंद होता है, लेकिन सब तो दूसरों के घर जाकर चोरी करके तो नहीं खाते हैं, तुम अपने पुत्र को कुछ भी काम करने से मना क्यों नहीं करती हो, आखिर उन्हें हटकती क्यों नहीं हो, उसे डांटती क्यों नहीं हो, इसे डांट के क्यों नहीं रखती, क्यों नहीं सिखाती कि दूसरों के घर से मक्खन चुरा कर नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हारा ही अनोखा बेटा है, हमारे भी तो बेटे हैं, हम भी तो उन्हें डांट कर रखते हैं, तुम क्यों नहीं अपने बेटे को डांटती हो। कृष्ण अक्सर गोपियों के घर जाकर उनका दूध दही मक्खन चुरा कर खा लिया करते थे और यशोदा माँ के पास अक्सर ऐसी शिकायतें आती रहती थी। तो यहाँ भी ऐसी ही एक शिकायत का वर्णन है जिसमें गोपी श्री कृष्ण की शिकायत लेके आती है कि उनका पुत्र जो है वो उनके घर में जाके मक्खन खाता है, और सिर्फ खाता ही नहीं है बल्कि बिखेर भी देता है। जो बच जाता है, जो उसे पसंद नहीं होता, वो उसे छोड़ नहीं देता, वो उसे फैला देता है। और ये भी नहीं कि सिर्फ खुद खाता हो बल्कि अपने दोस्तों को भी लेके जाता है, उनको भी खिलाता है, अपने साथियों को भी खिलाता है। दूध दही को कहीं भी छिपा के रख लो, ये ढूंढ लेता है और खा लेता है। छीके पे रख दो तब भी वो उखली के ऊपर चढ़ के उसे वहां से हांडी को उतार लेता है और दूध दही खा लेता है। और फिर ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि इसे बर्दाश्त कर लिया जाए, ये डेली डेली की बात है, रोज की बात है। श्री कृष्ण जो है वो रोज ही यही करते हैं। तो इसलिए गोपी जो है वो यशोदा माँ से शिकायत करती है कि तुम अपने बेटे को डांटती क्यों नहीं हो, इसे समझाती क्यों नहीं हो, समझा के क्यों नहीं रखती, आखिर तुम्हारा अनोखा बेटा नहीं है। जैसे हम सब अपने बेटे को संभाल के समझा कर रखते हैं, वैसे ही तुम भी इसको समझा के रखो, वरना गोरस को जो है वो बहुत नुकसान हो रहा है। प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? जब श्री कृष्ण दूध नहीं पीते थे तो यशोदा माँ उन्हें लालच दिया करती थी कि यदि वे दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण इसी लालच में आ जाते थे और दूध पीने के लिए तैयार होते थे, और तब उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में कुछ बातें सोचते हैं, जैसे कि इतने लंबे समय से लगातार दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी छोटी ही बनी हुई है, और बार बार दूध पीने से ये बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। जब इस चोटी को बार बार धोया जाएगा, काढ़ा जाएगा, गूंधा जाएगा, तो यह भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी चोटी हो जाएगी, और इतनी लंबी हो जाएगी कि जमीन तक पहुंचेगी और ऐसा लगेगा जैसे जमीन पर नागिन है। लेकिन उनकी ये चोटी लंबी नहीं हो रही है, इसीलिए वो अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं, दूध पीते हैं, इसको काटते गूंधते भी हैं, लेकिन फिर भी ये अभी तक छोटी की छोटी ही बनी हुई है। तीसरा प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन, रोटी, मलाई, दही आदि खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। उन्हें दूध पसंद नहीं है, वो तो सिर्फ वो जबरदस्ती पीते हैं ताकि उनकी जो चोटी है वो मोटी और लंबी हो सके, जैसे कि बलराम भैया की चोटी है। चौथा प्रश्न, तेही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तेही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के निम्नलिखित भाव मुखरित हो रहे हैं। बार बार शिकायत करने पर भी यशोदा माता पुत्र को शरारत करने से मना नहीं करती है। यशोदा माँ अपने पुत्र को जरूरत से ज्यादा अधिक ही प्यार दे रही हैं। श्री कृष्ण दूध दही मक्खन को खाने के साथ साथ उनका नुकसान भी करता है, इस बात को यशोदा नहीं मानती और अपने ही पुत्र का पक्ष लेती रहती है। वो इस बात को स्वीकार भी नहीं करती कि कृष्ण उनके घर जाके उनका नुकसान करता है, बल्कि वो कृष्ण का ही साथ देती है। श्री कृष्ण मक्खन दूध दही चुराता है और अपने साथियों को भी खिलाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि क्योंकि वो अपने पुत्र से इतना प्यार करती हैं, ज्यादा ही, और हमेशा उन्हीं का साथ देती हैं और उन्हें डांटती भी नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें मत किया करो कि लोगों की शिकायतें आती हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा ही लगता है कि तुमने ही अनोखे बेटे को पैदा किया है, जन्म दिया है, ऐसी बात ग्वालिन जो है वो यशोदा माता से कहती है। पांचवा प्रश्न, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण धरती पर थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं। इसका कारण यह है कि कई बार तो चोरी करने में यह स्वाभाविक रूप से, मतलब खुद से ही गलती से धरती पर गिर जाता है, और कई बार जल्दी जल्दी सारा मक्खन खा लेने के चक्कर में भी कुछ मक्खन जो है वो धरती पर गिर जाता है। श्री कृष्ण बालक है, छोटे बालक होने की वजह से ये संभव है कि थोड़ा बहुत मक्खन जो है वो नीचे गिर ही जाए। छठा प्रश्न, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा, अधिक अच्छा लगा और क्यों? हमने अभी दो पद पढ़े हैं, दोनों ही श्री कृष्ण के बारे में है। एक उनकी चोटी को लेकर है, दूसरा उनके मक्खन चोरी की लीला को लेकर है। आपको इन दोनों में से कौन सा पद ज्यादा अच्छा लगा बताइए। मुझे इन दोनों पदों में से दूसरा पद ज्यादा अच्छा लगा है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण का माखन चोर वाला रूप अधिक अच्छा लगता है। श्री कृष्ण की चोरी की शिकायतें लेकर जब गोपियां यशोदा माता के पास जाती हैं तो यशोदा माता पर उन शिकायतों का कोई असर ही नहीं होता, इसीलिए जो ग्वालिन है वो माता को एक उलाहना भी देती है, ताना देती है कि तै ही पूत अनोखो ज्याओ, उन्होंने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है जो वह हमेशा उसका ही पक्ष लेती रहती है। कल्पना, अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। ऐसा लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 8 से 10 साल के बीच में रही होगी। दूसरा प्रश्न, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी माँ ने किसी चीज को खाने से आपको मना किया हो और फिर भी आपने चुपके से उसे खा लिया हो और फिर आप पकड़े भी गए हो, आपकी चोरी पकड़ी गई हो और फिर आपने उसके लिए कोई बहाना भी बनाया हो? क्या ऐसी घटना कभी आपके साथ हुई है? कुछ तो आपने कभी किया होगा कि माँ ने कहा हो कि नहीं आपको ये चीज नहीं खानी है और फिर भी आपने वो खाई हो। ऐसी ही किसी कहानी, अपनी कहानी के बारे में लिखना है, उसकी तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से करनी है। जिस तरह श्री कृष्ण जो है वो दही मक्खन चुरा कर खाते थे, तो आपने कब क्या चुरा कर खाया था और पकड़े जाने पर क्या बहाना बनाया था उसके बारे में आप लिखिए। तीसरा प्रश्न, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि कभी आपने कुछ किया हो और किसी ने आपकी शिकायत कर दी हो, आपके मम्मी पापा से या आपके बड़े भाई बहन से आपकी शिकायत कर दी हो, फिर आपके अभिभावक मतलब माता पिता, बड़ा भाई या बहन, जिससे भी आपकी शिकायत की है, उसने फिर आपसे उत्तर मांगा हो, आपसे सवाल जवाब किए हो कि आपने ऐसा क्यों किया, किया था या नहीं किया था, क्यों किया था, जो भी है, तो इस तरह के सवाल जवाब आपसे किए हो। ऐसी घटना जरूर आपके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुई ही होगी, क्योंकि बच्चे हमेशा ही शरारत करते ही रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी कोई शरारत की होगी जिसके बारे में किसी ने आपकी शिकायत की होगी, तो कौन सी वो घटना थी जब आपकी किसी ने किसी से शिकायत कर दी और फिर आपके माता पिता ने या भाई बहन ने आपसे सवाल जवाब किए हो, क्या सवाल उन्होंने पूछा और आपने क्या जवाब दिया, इस बारे में ये कहानी जो है, ये घटना आपको जरूर लिखनी है। भाषा की बात। पहला प्रश्न, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए, माखन चुराने वाला यानी माखन चोर। दूसरा, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द क्या है? मुरलीधर, श्याम, मोहन, गोपाल, मुरारी। प्रश्न 3, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, इंदु, राका। मधुकर का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर, भौरा, मधु। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, दिनकर। ऐसे ही विपरीतार्थक शब्द हैं दिन, रात, श्वेत, श्याम, शीत, उष्ण। पाठ में से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। पाठ में से कुछ शब्दों के पर्यायवाची और कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द मया, माँ, माता, जननी। बलराम, बलदाऊ, हलधर। दूध, गौरस, क्षीर, पय, दुग्ध, सूरज, सूरज के पर्यायवाची रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, हरि, हरि का पर्यायवाची प्रभु, ईश्वर, नारायण, परमात्मा, दिवस, दिवस के पर्यायवाची हैं दिन, वासर, वार, दिवा, मंदिर, मंदिर के पर्यायवाची देवालय, पूजालय, सखा, सखा के पर्यायवाची मित्र, दोस्त, सहचर, मीत, अनोखा, अनोखा के पर्यायवाची अनूठा, निराला, अपूर्व, विचित्र, अद्भुत, विलोम शब्द कच्चा, पक्का, दिवस, रात्रि, हानि, लाभ, समर्थ, असमर्थ, प्रकट, ओझल, महत्वपूर्ण, महत्वहीन, आकर्षण, विकर्षण, पक्ष, विपक्ष, विज्ञ, अनभिज्ञ, प्रधान, गौण। दूसरे पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण मक्खन की चोरी करते थे और खुद भी खाते थे और अपने सखाओं को भी मक्खन खिलाते थे, अपने साथियों को भी मक्खन खिलाते थे। आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे? वो खुद तो खाते थे पर अपने दोस्तों को भी मक्खन खिलाते थे, दोस्तों को क्यों खिलाते होंगे? इसके आपको क्या कारण नजर आते हैं, यह आपको लिखना है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि जैसे साथ में जो भी दोस्त, जो भी सखा उनके साथ मक्खन खाते थे, कृष्ण जिनको मक्खन खिलाते थे, वे भी श्री कृष्ण का पक्ष लेते थे, उनका साथ देते थे। मतलब अगर किसी दिन पकड़े जाएं तो वो दोस्त उन्हीं का साथ देते थे, उन्हीं का पक्ष लेते थे, इससे श्री कृष्ण को चोरी करने में आसानी हो जाती थी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे सभी श्री कृष्ण का एहसान भी मानते थे, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें मक्खन खिलाते थे। और अगर किसी दिन श्री कृष्ण को मक्खन चुराते हुए कोई देख लेता था तो उनके दोस्त ये मदद करते थे कि वो ये कहते थे कि श्री कृष्ण ने मक्खन नहीं चुराया है, वो उन्हीं का साथ देते थे। और जो सखा थे, मित्र थे श्री कृष्ण के, वो मक्खन चोरी करने में उनकी मदद भी करते थे कई बार। अब जब मक्खन जो है वो छींके पे रखा होता था तो श्री कृष्ण वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, वो छोटे थे, बच्चे थे, वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, तो उसके लिए उनको अपने मित्रों की जरूरत होती थी। जैसे आप जानते हैं आज भी जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो आपने देखा होगा कि कृष्ण जो बालक कृष्ण बनता है वो मटकी को किस प्रकार फोड़ता है। बच्चों के ऊपर बच्चे घेरा बनाकर खड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ खड़े होते हैं, उनके ऊपर कुछ खड़े होते हैं, और जो आखिरी जो कृष्ण बनता है वो सबसे ऊपर होता है और वो ही मटकी को फोड़ता है। तो इसलिए कृष्ण को भी उनकी मदद की जरूरत थी, इसलिए वो खुद भी मक्खन खाते थे और अपने दोस्तों को भी मक्खन खिलाते थे। इस पाठ में दोनों पदों में कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, उनके अर्थ देखेंगे। कब ही, कब, किति, कितनी, पियत अर्थात पीते हुए, अजहू मतलब अभी भी, बैनी बेड़ी चोटी, लांबी लंबी, काढ़त बाल काढ़ना या फिर बाल बनाना, गुहत गूंथना, नहावत नहाते, जेहे हो जाएगी, भूई भूमि धरती, कांचो मतलब कच्चा, पची पची यानी कि बार बार, चिरजीवो चिरंजीव लंबे समय तक जीवित रहना, हलधर हलधर बलराम, और जोटी जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी। दूसरे पद में कठिन शब्द जिनका प्रयोग हुआ है, तेरे यानी तुम्हारे, लाल पुत्र, लाल का अर्थ यहाँ पर लाल शब्द जो है वो रंग के उसमें प्रयोग नहीं हुआ है, ये पुत्र बेटे के अर्थ में प्रयोग हुआ है। जानी जानकर, सुनो सुनसान सुनसान जानकर, ढूंढे ढंढोरी यानी खोज खाज कर, ढूंढ कर, आप ही यानी अपने आप, खुद स्वयं, किवारी दरवाजा किवाड़, पैठ पैठी मतलब घुसकर, ऊखल चढ़ यानी ओखली पर चढ़कर, सीके छींका जो होता है जिसमें दूध दही रखा जाता है उसको छींके कहते हैं, उसी को सीके यहाँ पर लिखा है। अनभावत जो अच्छा ना लगे, भूई में धरती पर, ढरकायो मीन्स गिरा दिया, गौरस गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही मक्खन घी आदि, कौने ढंग लायो यानी किस ढंग से लाया, हटके यानी हट का भाव, डांटना, डांट के रखना। पुत पुत्र, जायो जाया मतलब पैदा किया, जन्म दिया। तो ये हमने सूरदास जी के पद जो है वो दोनों पढ़ लिए हैं। दोनों पदों में कृष्ण की लीलाओं के बारे में दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने कई बाल लीलाएं की हैं, जब वो छोटे थे तो वो अलग अलग तरह की कई लीलाएं करते रहते थे। आपने कृष्ण लीला की कई सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी अन्य लीलाएं भी सुनी होंगी, उनकी कहानियां सुनी होंगी। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी एक लीला लिखेंगे, कोई भी एक कहानी कृष्ण के बारे में, जब वो छोटे थे, जब उन्होंने कुछ किया हो, कोई भी एक घटना जो आपको पसंद आई हो उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कोई भी घटना, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी, तो ऐसी ही कोई लीला जो आपको पसंद है, अच्छी लगी है, उसको आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो ये पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है अच्छी तरीके से। तो हम नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।